नमो भगवते वासुदेवाय।
ठीक है ऐसे ही रहने।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः सुभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की सप्तम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। तत् किचक बल्मीकात् सह ओजह बल अन्वित सर्व अवयव संपन्न वज्रसंहनन जुवा उत्थित तप्त हेमाभ विभावशो इव एधस सतत कीचक बल्मीकात् सह वोजो बलान्वित सर्वायव संपन्नो वज्र संहननो जुवा उत्थित तप्त हेमाभो विभावशोर इवैधस सतत कीचक बल्मिका सह वोजो बलान्वित सर्वाय अवयव संपन्नो वज्र संहननो जुवा उत्थित स्तप्त हेमाभो विभावशो इवैधस सतत कीचक बल्मीकात् सह वोजो बलान्वित सर्वायव संपन्नो वज्र संहननो जुवा उत्थित स्तप्त हेमाभो विभावशो इवैधस। माता जी सब शब्दार्थ सह वह हिरण्यकश्यपु तत् उस कीचक बल में कात बाबी तथा बांस के कुंज से सह मानसिक शक्ति ओजह इंद्रिय शक्ति बल तथा पर्याप्त शारीरिक शक्ति से अन्वित युक्त सर्व समस्त अवयव शरीर के अंग संपन्न पूर्णतया फिर से पाकर वज्र संहनन वज्र के समान मजबूत शरीर वाला युवा तरुण उत्थित उठा हुआ तप्त हेमाभ जिसके शरीर की कांति पिघले सोने के समान थी विभावशो अग्नि एव सदृश ए धसा काष्ट से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उसके शरीर पर जल छिड़का त्यही हिरण्यकश्यपु उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बाबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काठ काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। लोग दोहराएंगे, जब ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उसके शरीर पर जल छिड़का, तेव ही हिरणकश्यपु उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे, वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बाबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य, हिरणकश्यपु पुनः जीवन तो उठा तो उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। अब वह अत्यंत बलिष्ठ शरीर वाला तरुण पुरुष था और उसके सुंदर शरीर की आभा पिघले सोने जैसी थी। यह कायाकल्प उसकी कठोर तपस्या का परिणाम था। ॐ ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरो दिन तारिणं। तो इस अध्याय में हिरणकश्यपु के अमर बनने की जो योजना है वह किस तरह से फलीभूत होती है। संसार में हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, मृत्यु से हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। ऐसे संसार का नियम है कि संसार में जो कोई भी व्यक्ति आता है उसे एक दिन मरना होता है। इस संसार को इसलिए मृत्युलाय कहते हैं, मृत्युलाय या मृत्यु लोक। यहां हर व्यक्ति उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, कुछ उत्पन्न करता है, कुछ समय तक रहता है, फिर देहांतर करता है, देह छोड़ देता है। कोई युग पर्यंत रहता है, कोई 100 वर्ष जीवित होता है, आद्यम मरण या युगांतरेवा। कोई युग तो हजारों वर्ष जीवित रहता है, जैसे रावण 52 चतुर्युग वो राज्य कार्य संपन्न किया, को 52 चौकड़ी बोलते हैं। चतुर्युग जो है 52 टाइम्स सर्किल किया, उतना समय रावण जो है राजा बनकर रहा। 52 चौकड़ी, एक चौकड़ी में 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो इस तरह से 52 चौकड़ी वो राज्य किया था रावण। रावण भी ब्रह्मा जी से अमरत्व प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी शिव जी की अनेक प्रकार से पूजा करता था। शिव बिरंच पूजे ही बहु भाती, और बहुत उत्तम कुल में जन्म लिया था। ब्रह्मा जी के डायनेस्टी में रावण जो है जन्म लिया था, उत्तम कुल, पुलस्त करनाति, पुलस्त का ग्रैंड सन था, पुलस्त मुनि का। अब बहुत उत्तम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, बहुत बलवान था, बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, ज्ञान में, बल में, तेज में, पौरुष में, हर चीज में अद्वितीय था। और इतना ही नहीं, 10 सिर वाला था, उसके बाद 10 ब्रेन था और 20 भुजाएं थी, और जब चलता था तो जमीन भी डोलने लगती थी, भूकंप आ जाता था। अगर पृथ्वी पर आघात करता था तो पृथ्वी में भूचाल आ जाता था, पृथ्वी कांप जाती थी। फिर भी रावण का भी अंत हो गया, क्योंकि संसार का नियम है कि यहाँ जो भी आता है उसको मरना है। मृत्यु अकट सत्य है, मृत्यु का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, एक दिन सबको मरना है। इसलिए भगवान गीता में कहे कि जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यह अपरिहार्य है, एक दिन सबको मरना ही है। जो भी इस संसार में आता है, भौतिक देह धारण करता है, तो उसको मरना है। मरने के बाद फिर पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के बाद फिर अपने कर्म का फल भोगता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हिरण्यकश्यपु जो है अमरत्व चाहता था, अमर होना चाहता था। आज के वैज्ञानिक लोग भी अनेक औषधियों का, अनेक दवाइयों का खोज कर रहे हैं जिससे व्यक्ति अमर हो जाए। प्राय पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है कि अब हम कुछ कदम दूर हैं अमरत्व होने से। आज के वैज्ञानिक कुछ ऐसा खोज कर रहे हैं जिसे हम अमर हो जाएंगे। संभव हो भी सकता है, कुछ लंबा समय हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया था अमर होने के लिए, बहुत बड़ा तपस्या किया था, और ऐसा तपस्या किया था उसके बराबर कोई आज तक तपस्या नहीं किया है, न भूतो न भविष्यति, कोई ऐसा तपस्या नहीं किया है। उसने तपस्या में सबको पीछे छोड़ दिया है, सबका जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड होता है वो सबका रिकॉर्ड जो है हिरण्यकश्यपु ने तोड़ दिया। ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि उसके आगे सारे देवता लोग, ब्रह्मा जी सब लोग झुक गए, सबको झुका दिया अपने तपस्या से। ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा उसके तपस्या के आगे। वैसे भक्ति में एक भक्त प्रवचन कर रहे थे, बोले कि भक्तों को भी हिरण्यकश्यपु को आदर्श मानना चाहिए तपस्या के क्षेत्र में। तपस्या के क्षेत्र में हिरण्यकश्यपु जो है आदर्श स्थापित किया है, ऐसा कोई तप नहीं किया है। तो वैसे ही भक्ति में रम जाना चाहिए और बर्फ जैसा जम जाना चाहिए और वृक्ष जैसा थम जाना चाहिए। भक्ति में रम जाओ और जम जाओ और थम जाओ। हिरण्यकश्यपु ऐसा तप किया कि बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, एक पांव पर खड़ा होकर के तप किया। उसका जो तप है अलग प्रकार का तप है, निज इंद्रिय तृप्ति के लिए तप है। लोग तप करते हैं तीर्थों में, तीर्थाटन करते हैं, दान करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ दान तप कर्म, अपने आर्थिक वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, पद उन्नति के लिए, समाज में मान सम्मान के लिए। तो ये तप जो है, और जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया जाता है वो सात्विक तप है। तो हिरण्यकश्यपु का जो तप है स्व इंद्रिय तृप्ति के लिए है। इस तप की प्रशंसा नहीं की गई है। जैसे सूर्य भी तपते हैं तो दूसरे को जीवन देने के लिए, सूर्य सालों भर तपते हैं, भगवान के आदेश से सूर्य तपस्या करते हैं। अगर सूर्य न रहे तो सारा संसार जो है बर्फ से आच्छादित हो जाएगा, हर जगह बर्फ हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। इन सूर्य तपस्या करके दूसरे को जीवन देते हैं। वृक्ष तपस्या करता है, शास्त्र में वृक्ष को भी परम त्यागी माना गया है, साधु माना गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृक्ष का उदाहरण दिया, तोरो रिव सहिष्णुना, वृक्ष जैसा सहनशील। वृक्ष कितना सहन सहजता है तप को। धूप को, सर्दी को, बरसात को वृक्ष सहन करता है और सहन करके दूसरे को आनंद देता है। वृक्ष में जो भी फल फूल होता है दूसरे की सेवा में लगा देता है। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया, वृक्ष न कबहु फल भखे, पिबंती नद्यः स्वयमेव नाभ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलुवारि बाहा, परोपकाराय शतां विभूतय। जो सत विभूति होते हैं और एक असत विभूति होते हैं, एक दैवी वृत्ति होता है, एक आसुरी वृत्ति होता है। तो वृक्ष को, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, वृक्ष में फल प्रतिवर्ष आते हैं। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, नदियां हमेशा बहती हैं। नदी का पानी जो है डैम में रोक करके या फिल्टर प्लांट करके हम पीते हैं। नदी का काम है दूसरे को शीतलता और आनंद प्रदान करना। पिबंती नद्यः स्वयमेव नाभः, नदी अपना जल से हम नहीं पीते। बादल वर्षा करता है जिससे जल होता है, जल से जीवन होता है, जल से अन्न होते हैं। से भीमा प्रवचन में बता रहे थे कि नो रेन नो ग्रेन नो ब्रेन, देर इज नो एनी गेन, बता रहे थे। रेन ना हो, वर्षा ना हो तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो जीव नहीं होंगे। अनाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अनुसंभव, यज्ञाद भवंती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। अनाद अन्न से देहधारी जीवन धारण करते हैं, फूड फॉर लाइफ। जीवन धारण करने के लिए भोजन जरूरी है, फूड जो है जीवन जीने के लिए है, फूड फॉर लाइफ। अगर अन्न ना हो तो कैसे जीवित रहेंगे लोग, नहीं रहेंगे। अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है। सतयुग में लोगों का प्राण जो है हड्डी में बसता था, हवा पी करके रहते थे लोग, जल पी करके भी रहते थे। लेकिन कली युग में बिना अन्न के कोई नहीं जीवित रह सकते। कली युग में प्राण जो है अन्न में बसता है। गीता में भगवान कहते हैं अनाद भवंती भूतानि, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। अन्न कैसे होता है, पर्जन्याद अनुसंभव, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अब वर्षा कैसे होता है, यज्ञाद भवंती पर्जन्यो, यज्ञ करने से वर्षा होती है। यज्ञाद भवंती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसलिए भक्त लोग जो सतवृत्ति के लोग हैं यज्ञ करते हैं, वृक्ष जो है यज्ञ करता है, नदी यज्ञ करती। तो हिरण्यकश्यपु ने ऐसा तप किया, जो उस तपस्या का प्रयोजन जो है भिन्न था। भगवान गीता में कहते हैं अगर तपस्या करते हैं तो मुझे निमित्त करके करो, यत करोसी यदत नासी यद जहोसी ददासी यद यद तपस्यसी कौनते तत्कुरुष्व मदर्पणम। अगर तपस्या करते हो तो मदर्पणम, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण करो। लेकिन लोग तप करते हैं प्रायः, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, कोई रविवार को व्रत करता है, कोई सोमवार को व्रत करता है, कोई मंगलवार को करता है, कोई कोई हफ्ते में 3-4 दिन उपवास करता है। वैष्णव लोग एकादशी 2 बार महीने में करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हफ्ते में 3 बार उपवास करते हैं। एक माता जी से हम लोग बात कर रहे थे, बोली कि मैं मंगलवार को भी उपवास करती हूँ, सोमवार को भी उपवास करती हूँ, शनिवार को भी उपवास करती हम लोग महीने में 2 बार उपवास करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हफ्ते हफ्ते उपवास करते हैं। इसका फल भिन्न होता है। तो हिरण्यकश्यप ने भारी तप किया था और ऐसा तप किया उसका शरीर का बिल्कुल कंकाल बच गया था, हड्डी, और हड्डियों में भी दीमक चींटी ये सब लग गए थे और उस कंकाल के ऊपर एक बहुत बड़ा दीमक का घर बन गया था और उसके ऊपर जो है बांस के कि झुरमुट आ गए थे, दिखाई नहीं दे रहा था। दीमक के घर को बाबी बोलते हैं, बाबी तथा बांस के कुंज से बिल्कुल ढक गया था। जैसे सूरज जो है, जैसे आग जो है लकड़ी में छिपी रहती है, जिस तरह काष्ट से अग्नि उत्पन्न होती है, बंबू में आग रहता है, बांस में, बांस एक बांस के साथ जब घर्षण होता है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, लकड़ी को जलाने से आग उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह हिरण्यकश्यप के अंदर जो तेज था वो ढक गया था, दीमक से बांस के कोपड़ों से ढक गया था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने जल कमंडल से छिड़का वैसे ही उठ गया, वो जीवंत तो हो गया, जीवित हो गया, ऐसे मरा नहीं था, उसके प्राण हड्डी में थे लेकिन बिल्कुल जागृत हो गया, सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में आ गया। ब्रह्मा जी का जल भी दिव्य है, ब्रह्मा जी के जो कमंडल में जल है वो कारणाव जल है, कारण समुद्र का जल है। ब्रह्मा जी हमेशा अपने कमंडल में गंगा जल धारण करते हैं, जैसे आजकल हर आदमी अपने सोल्जर बैग में बिस्लेरी बोतल ढोता है, वैसे ब्रह्मा जी हमेशा अपने कमंडल में गंगा जल रखते हैं, दिव्य जल है, और जब जरूरत पड़ता है उस गंगा जल का सेवन करते हैं। उनका कमंडल भी दिव्य है, ऐसा नहीं कि वो जल एक बार भर दिए तो खत्म, नहीं, वो दिव्य कमंडल भी है, वो जल कभी घटता नहीं है, और गंगा जल के स्पर्श करने से और तेजस्वी हो गया। जैसे गंगा जल का सेवन करने से तीर्थताप मिट जाता है, हमारे अनेक जन्मों के पाप मिट जाते हैं, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, गंगा जी का दर्शन करने से, मज्जन करने से और पान करने से, से हम लोग चरणामृत पीते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम, गंगा जी चरणामृत हैं, भगवान के चरणों से आती हैं। गंगा जी क्या है? चरणामृत हैं। हम लोग भगवान का अभिषेक का जो चरणामृत सेवन करते हैं वो तीर्थताप को दूर कर देता है, उसी तरह ब्रह्मा जी के जो कमंडल में जो जल है वो चरणामृत है। भगवान वामन देव के चरणों को धोकर वो जल जो है दिव्य लोक से आया, ध्रुव लोक में आया, फिर ब्रह्म लोक में आया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिए। इस जल का दर्शन करने से भी पाप दूर हो जाता है, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। तो जैसे ही जल का स्पर्श हुआ और तेज हो गया, जैसे लोग भोजपुरी में कहावत है कि एक तो करेली दूसरे नीम पर सवार, करेला जो है ऐसे ही कड़वा होता है और नीम के ऊपर वो सवार हो जाए तो और कड़वा हो जाता है। करेला का जो लता है उसको सपोर्ट चाहिए, तो लोग मकान के सपोर्ट से या कोई पेड़ के सपोर्ट से करेले को लगा देते हैं, और करेला का सपोर्ट नीम से हो जाए, नीम पर अगर सवार हो जाए तो और कड़वा हो जाता है। एक तो करेला, दूजे नीम पर सवार, और एक तो भाल और दूजे मिला कुदाल, कुदाल से जमीन में गड्ढा खोदा जाता है। भाल को अगर कुदाल मिल जाए, भाल का जो पंजा होता है वो बहुत मजबूत होता है, भाल जमीन में 10 फीट 15 फीट तक खुदाई करता है अपने पंजों से। अभिप्राय है कि भाल हिरण्यकश्यपु तो ऐसे ही ये था, बहुत बलवान था, तप करके और भी बल प्राप्त कर लिया था, और गंगा जी का स्पर्श करने से और तेजस्वी हो गया और सुंदर हो गया। उसके शरीर की अंग कांति पिघले हुए सोने के समान दीप्त हो रही थी, चमक रही थी, तप्त कांचन। जैसे सोना बहुत सुंदर होता है, बहुत चमकीला होता है, उसको तपा देने से और सुंदर हो जाता है, तप करने से और सुंदर हो जाता है। तो हिरण्यकश्यपु तप करके और सुंदर हो गया था। जैसे हीरे को जितना घिसिए उतना ही चमक आता है, माचिस को घिसने से प्रकाश होता है, मेहंदी को घिसने से उसमें और लालिमा होती है, गन्ने को पीसने से जितना पीसेंगे उतना रस निकलता है, तो तपस्या से और तेज बढ़ता है और भोग करने से तेज घट जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप न त्याज्यम, यज्ञ दान तप कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा करना चाहिए। यज्ञ क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलियुग का सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम जप करना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, हरिनाम का जप करना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। बाकी और सब यज्ञ वर्जित है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जितम, कलियुग में यज्ञ वर्जित है। लेकिन एक यज्ञ की संस्तुति की गई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रचारित किया है कि कलियुग में नाम संकीर्तन यज्ञ जो है ये श्रेष्ठ यज्ञ है, सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन यज्ञ, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। कृष्णम वरणम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षद जगई संकीर्तन प्रायई, जगई संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ का जिन्होंने प्रवर्तन किया है। इसलिए भक्तों को यज्ञ हमेशा करना चाहिए, और यज्ञ में इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अनुवरत हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, यही यज्ञ जो है कलियुग का सबसे बड़ा ये यज्ञ है। और दान क्या है? यज्ञ हो गया दान, तो ज्ञान दान करना, पुस्तक वितरण करना ये ज्ञान दान है। आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो ज्ञान दान कीजिए, भगवद गीता। मैराथन में भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं, ज्ञान दान है, ये सबसे बड़ा दान है। ये भगवान इस दान की संस्तुति किए हैं, न चतस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्मात् न च अन्य प्रियो भुवि। वो सबसे बड़ा प्रिय है जो गीता के ज्ञान का प्रचार करता है। भक्त लोग स्लोगन बनाते हैं कि गीता का ज्ञान है और कागज का दाम है, ये गीता का ज्ञान है और दाम नहीं है इसका, यह अमूल्य है, इस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, कागज का केवल दाम। गीता का ज्ञान है और कागज का दाम है, केवल कागज का दाम लिया जाता है, ज्ञान का कोई दाम नहीं दे सकता है। ज्ञान को पैसे से हम नहीं खरीद सकते हैं, ज्ञान को आप किसी भी वस्तु से नहीं नाप सकते हैं, उसका कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई उसका वाट नहीं है जिसे आप माप सकते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहे कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिन। इस ज्ञान को हम बेच नहीं सकते हैं, इसको भगवत कृपा से कोई ग्रहण कर सकता है, इसको भक्त लोग दे सकते हैं। तो हिरण्यकश्यपु का जो तप है संसारी लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। अगर किसी को इस संसार में कुछ बनना है, जैसे तमाल जी प्रवचन में बता रहे थे कि कुछ प्राप्त करना है तो तप से प्राप्त कर सकते हैं। किसको कुछ भी प्राप्त करना हो, संसारिक भौतिक आध्यात्मिक किसी भी स्तर पर, तो उसको तप करना पड़ता है। किसी को आईएएस बनना है तो बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। किसी को बहुत बड़ा व्यवसायी बनना है तो उसको भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। किसी को बहुत बलवान बनना है तो उसको भी बहुत दंड बैठक करना पड़ता है। सुबह ही पहलवान लोग जो पहलवानी करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, दौड़ते हैं, दंड बैठक करते हैं। किसी को बहुत बड़ा संगीतकार बनना है तो सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में गाते हैं, सारे गम हारमोनियम करते हैं। बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तप के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। या जो कुछ प्राप्त है वो भी तप से प्राप्त है। ब्रह्मा जी को भी तप करना पड़ा, शिव जी को भी तप करना पड़ा, ध्रुव महाराज को भी तप करना पड़ा। मधुबन में हम लोग देखते हैं जहां ध्रुव टीला है, जहां ध्रुव महाराज तपस्या किए हैं, बिना तपस्या के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए तप में आसीन होना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी ने तप के लिए बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, जप करना, ये बहुत सरल तप है, इसको कोई भी कर सकता है। हम हिरण्यकश्यपु जैसा तप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो श्री प्रभुपाद जी ने जो तपस्या दिया उसको कर सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के तपस्याओं का वर्णन है, और तप के द्वारा, तप से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को भी बस में करना है तो तप करना चाहिए। अदिति ने तप किया, पिशणी और सुतपा 12,000 वर्ष तप किए। पिशणी और सुतपा 12,000 वर्ष तप किए तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। कश्यप अदिति ने महान तप किया तो भगवान वामन बनकर आए, उपेंद्र बनकर आए। कोई तप करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। एक व्यक्ति निर्जन वन में तप कर रहा था, बहुत भारी तप कर रहा था, निर्जन, जहां शेर भालू बाघ चीते थे, जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता, बहुत सघन वन में निर्जन स्थान में तप कर रहा था, रात दिन तप में था। तो जंगल में एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई, तो उसने कहा कि भाई आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, निर्जन वन में जहाँ कोई नहीं है, न आसपास में कोई दुकान भी नहीं है, न खाने की कोई सामग्री है, न कोई पेय पदार्थ है, आप क्यों निर्जन वन में हैं? तो व्यक्ति कहा कि मैं यहाँ तप कर रहा हूँ। किस लिए तप कर रहे हैं? आपके तप का क्या प्रयोजन है? किम प्रयोजनम? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं तप कर रहा हूं कि शेर आकर के मुझे खा जाए। जंगल में शेर है, बाघ है, ये मुझे आकर खा जाए, इसके लिए मैं तप कर रहा हूं। तो व्यक्ति ने कहा कि ये इसमें तप करने की क्या आवश्यकता है? शेर तो खा ही जाता है, जो सामने आता है उसको शेर मार देता है, खा जाता है। तो मैं तप इसलिए कर रहा हूं कि शेर जल्दी ही आकर मुझे खाए। क्यों? इतनी क्या शीघ्रता है? अभी तो बहुत समय है जीने के लिए, जियो। क्यों मरना चाहते हो? इतना जल्दी क्यों मरना चाहते हो? लोग संसारी लोग कहते हैं कि अरे काल करो, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसो। जल्दी जल्दी क्यों करते हो? जीना है कई वर्षों, कई वर्षों अभी जीवित रहना है, क्यों इतनी जल्दी है? क्या जल्दी है? इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? मरना है तो मृत्यु निर्धारित समय पर आएगी ही, क्यों जंगल में शेर को अपना भोजन देना चाहते हो? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं इसलिए अपने शरीर को शेर का हार बनाना चाहता हूं कि शेर को व्यक्ति का मांस खाने का स्वाद लग जाए तो अन्य लोगों को भी वो खाएगा। अगर शेर को यह स्वाद मिल जाए, मनुष्य के मांस खून खाने का स्वाद मिल जाए, तो नरभक्षी हो जाता है, वो मनुष्यों को खाने लगता है। क्योंकि मनुष्य का जो मांस है और रुधिर है बहुत मीठा होता है। एक बार शेर, बाघ या चीता आदमी को खा ले तो हमेशा वो खाना ले। आप पारे कॉलोनी में देखते हैं कि हमेशा शेर चीता आ जाता है, रेसिडेंशियल एरिया में आकर लोगों को खाने लगते हैं। उसको आदत जब हो जाती है, जब आदत हो जाती है तो हमेशा आदमी को खाने लगता है। तो उसने कहा कि आपने इतना बड़ा तप किया है और तप का आपका उद्देश्य तो बहुत महान है। उसके तपस्या का उद्देश्य क्या था? कि अपने को शेर को खिला करके कि अन्य लोगों को संकट में डालना। तो जो आसुरी तप है वो दूसरे को संकट देने के लिए होता है, और जो सत्य दैवी तपस्या होता है दूसरे को आनंद देने के लिए होता है। कोई व्यक्ति जीवित होता है तो दूसरे को आनंद देने के लिए, और कोई एक व्यक्ति जीवित रहता है तो दूसरे को कष्ट देने के लिए। कोई व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत समाज में उत्पात करता है, उत्पीड़न करता है, समाज को अस्त व्यस्त करता है, लोगों में इधर का उधर झगड़ा लगाता है। गांव में या हर जगह कुछ इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो इधर का तिल का तार बनाकर कहना, दूसरे के प्रति उसको उकसाना, भड़काना, समाज में हमेशा शकुनी और मंथरा रहते हैं। तो अपनी जान की कुर्बानी दे करके भी दूसरे को क्या देना चाहते हैं? दुख देना चाहते हैं। अपने दुख की परवाह नहीं करते हैं, वो दूसरे को दुख को देख करके सुखी होते हैं। पर दुख सुखी, दूसरे को दुख को देखकर उनको आनंद आता है, और दूसरे को सुख को देखकर उनको दुख होता है। पर सुख दुखी, इसके ठीक विपरीत जो दैवी वृत्ति के लोग होते हैं, पर दुख दुखी और पर सुख सुखी। तो जैसे मृगारी जो है पशुओं का जब वध करता था तो उसको बहुत आनंद आता था, पशुओं को अधमरा करके जब छोड़ देता था तो उसके अंदर हृदय में बहुत आनंद होता था। नारद जी से जब मुलाकात हुआ तो नारद जी कहे कि क्यों पशुओं को मारते हो, अनावश्यक पशुओं को क्यों मार रहे हो, तुम्हें खाने के लिए एक पशु पर्याप्त है, बहुत सैकड़ों पशुओं को अधमरा करके क्यों छोड़ते हो, एक सुअर को हरिण को मार लोगे तो पूरा परिवार एक दिन के लिए भोजन प्राप्त कर सकता है, कई परिवार भोजन कर सकता है। तो मृगारी ने कहा कि मैं पशुओं को इसलिए मारता हूं कि जब पशु तड़प तड़प करके अधमरा होकर जब मरते हैं तो मुझे आनंद आता है, अधमर जीव जब तड़प फड़ करे तबे ता आनंद मोरे अंतर बढ़े, हमारे हृदय में बहुत आनंद आता है जब पशु तड़प तड़प करके अधमरा अवस्था में जीव तड़प तड़प कर मरता है तो मुझे आनंद आता है, ते आसुरी वृत्ति है, वो दूसरे के दुख में वो सुखी होता है। दया जीव का एक सर्वोत्कृष्ट गुण है, दया सर्वभूतेषु, लेकिन इसके विपरीत जो असुरी वृत्ति के लोग होते उनमें दया नहीं होता है, दया बिल्कुल नहीं होता है। दया जीव का स्वाभाविक गुण है, अर्जुन को भी दया आ गई देख करके, महाभारत युद्ध के पूर्व जब देखे कि हमारे गुरुजन हैं, पितामह हैं, हमारे साले हैं, संबंधी हैं, हमारे सब वयो श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे हमसे उम्र में बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, पूजनीय हैं, इन पर कैसे बाण चलाऊंगा, इन महानुभावों को कैसे मारूंगा, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, कह कि हे कृष्ण में ये जो बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, गुरु द्रोण, गुरु पुत्र अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा, दया उनको आई कि इनको नहीं मार सकता हूं, जिनके कृपा से मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, जिनके कृपा से मैं इतना ख्याति प्राप्त किया हूं, उनको बाण से नहीं मार सकता हूं, भीष्म पितामह की कृपा से हम लोग अनेक संकटों से बचे, जैसे बिना पक्षी बिना पंख के जो पक्षी के बच्चे होते हैं मां पर आश्रित होते हैं, अजात पक्षा, बित्रासुर कह कि मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूं, जैसे नई ब्याई हुई गाय के बच्चे मां पर आश्रित होते हैं, छोटे पक्षी जिनके पंख नहीं होते हैं मां पर आश्रित होते हैं, मां अपने चोंच में जो कुछ भी ले आती है उस पर खाकर आश्रित होते हैं, अजात पक्षा युमा तरम खगा अस्तन्यम यथा बस सतरा सुधार था, बछड़ा जो है मां की बाट देखता है, गाय माता जंगल में जाती है चरा खाकर आती है तो बच्चा जो है मां की बाट देखता है, छोटे पक्षी जिनके घोंसले में रहते हैं पंख नहीं होते हैं मां पर आश्रित होते हैं, उसी तरह अर्जुन कहे कि मैं भीष्म पितामह के ऊपर आश्रित हम लोग थे, जब हमारे पिता मर गए और अनेक प्रकार से धृतराष्ट्र और दुर्योधन उपाय किए मारने के लिए, तो भीष्म पितामह अजात पक्षियों की तरह हमें रक्षा की, अजात पक्षा युमा तरम खगा, तीन पर बाण नहीं चलाऊंगा, स्वाभाविक गुण है। दया जो है जीव का आभूषण है, लोग आभूषण पहनते हैं कान में गले में हाथ में, लेकिन जीव का सबसे बड़ा सुंदर आभूषण क्या है तो दया, तितिक्षव कारुणिक, तितिक्षव सहनशीलता, तितिक्षव कारुणिक दया, तितिक्षव कारुणिक okay, सुहृदम सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण, आभूषण क्या है, साधु का आभूषण है साधव साधु भूषण, साधु का आभूषण तितिक्षव कारुणिक, सुहृदम, वो तितिक्षवा होता है, सह लेता है हर चीज को, सहनशील। चेतन माप के तरो रिव, वृक्ष जैसा कोई सहनशील नहीं हो सकता है। तरो रिव सहिष्णुना, तितिक्षवा कारुणिक, सुहृदम और सबका मित्र होता है। सुहृदम सर्वदेहिना, सारे प्राणियों का, केवल मनुष्य प्राणियों का ही नहीं, मनुष्यतर प्राणियों का भी, पशु पक्षी कीट पतंग सबके प्रति सुहृद होता है, सबके प्रति सम होता है। ये गीता में भगवान विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव सुपाक्य च पंडिता समदर्शन। तो आभूषण क्या है? साधव साधु भूषण। और सबसे बड़ा आभूषण क्या है? श्रोतम श्रोत नैव, न कुंडले न दाने न पाणी न तु कंकड़े न। कान जो है कुंडल पहनने के लिए नहीं है, भगवान के विषय में सुनने के लिए है। कान का असली शोभा क्या है? भगवान के विषय में सुनना। श्रोतम श्रोत नैव न कुंडले न दाने न पाणी न तु कंकड़े न। हाथ जो है कंगन पहनने के लिए नहीं है, दान करने के लिए। हाथ से दान देना चाहिए। अगर आपके घर में पैसा है तो दान देना चाहिए। नदी में आप जा रहे हैं, नाव में जल बढ़ने लगे, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, आ दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सबसे बड़ा बुद्धिमानी क्या है? से नाव में जल भरने लगे तो क्या करना चाहिए? जल को जितना जल्दी तत्परता से बाहर निकलना चाहिए, तो जल भरने पर नाव डूब जाएगी। पानी बाढ़े नाव में नाव पर आप सवार होकर जा रहे हैं मान लीजिए, और उसमें पानी भरने लगे तो बाल्टी से चाहे हाथ से उसको बाहर करना चाहिए। आ घर में बाढ़े दाम, आ घर में ज्यादा पैसा हो जाए तो दान करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा पैसा होने पर वो भी डुबा देता है। दो हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से उसको ये करना चाहिए, यही सयानो काम, ये सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु पुनः जीवन तो हो उठा, तो उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। उसका शरीर वज्र जैसा हो गया तपस्या करने से। प्रारंभ में शरीर उसका बिल्कुल कृश हो गया था, सूख गया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब दिव्य जल ये किया तो बिल्कुल सुंदर हो गया। जैसे वृक्ष जब ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं, वर्षा ऋतु में हरा भरा हो जाते हैं, पहाड़ के ऊपर जो वृक्ष हैं वहां कोई जल नहीं देता है, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष हैं ऐसे भगवान के ऊपर आश्रित हैं, जब वर्षा होती है तब हरे भरे हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं लेकिन वर्षा गिरने से फिर हरे भरे हो जाते हैं। और जो बगान में जो वृक्ष हैं वो डेली पानी दिया जाता है फिर भी सूख जाता है। जो पहाड़ के वृक्ष हैं भगवान पर आश्रित हैं, जो रहे राम भरोसे पत्थर पर हरियाए, पत्थर पर भी वो हरा भरा रहता है, और गार्डन में डेली पानी देने से भी सूख जाता है, बल्कि सुबह पानी न दीजिए तो शाम को बिल्कुल ये हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन पहाड़ के जो वृक्ष हैं जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, तो तप करते हैं, वो तपस्या में हैं तो नहीं सूखते हैं। तो हिरण्यकश्यपु का तप जो है भले उसका उद्देश्य अलग हो, लेकिन तप जो है बहुत दिव्य तप किया, भले इसका उद्देश्य अलग है, तप किया है। इसलिए ब्रह्मा जी के जल के स्पर्श प्राप्त करने से ही नवयुवक हो गया, तरुण बिल्कुल युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। अगर किसी को युवक रहना है, जल्दी बूढ़ा नहीं होना है, बीमार नहीं होना है, तो तप करना चाहिए। भोगे रोग भये, भोग करने से रोग होता है, आ भोग का त्याग करने से आदमी दीर्घायु होता है, लंबा आयु प्राप्त करता है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि भोग से व्यक्ति रोगी हो जाता है, इसलिए भोग का संस्तुति नहीं किया गया है, त्याग का संस्तुति किया गया, त्यागे न। ब्रह्मचर्य देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपूच्यते, तपेन ब्रह्मचर्येण समेन दमेन, इसे जो है व्यक्ति दीर्घायु होता है, वृद्ध नहीं होता है, हमेशा युवावस्था में रहता है। जब कोई भक्त बन जाता है तो जल्दी वृद्ध नहीं होता है, बाहर के लोग भक्तों की तुलना में जल्दी वृद्ध हो जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति भी इस्कान में आकर युवक हो जाता है, सब देखा जाता है। वृद्ध व्यक्ति भी इस्कान में ज्वाइन करता है तो फिर वो युवा अवस्था में आ जाता है, क्योंकि तब करता है, चार नियम पालन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, तो बिल्कुल तेज तेज बढ़ जाता है, ऐसा देखा जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो समय हो गया, इसलिए हम प्रश्न